ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रज भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 15 को डिस्कस करेंगे। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये अध्याय बहुत फेमस है क्योंकि कुछ कुछ रेफरेंसेस में इस तरह से लिखा है कि इस अध्याय को सभी को इस अध्याय को पूरा याद करना चाहिए। सामान्यतः जब किसी कोई व्यक्ति अगर अपनी मृत्यु के समय इस अध्याय को सुनता है तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग, भगवान किस तरह से कितने महान हैं और किस प्रकार से भगवान हमें मेंटेन करते हैं। और भगवान दोनों प्रकार की आत्माएं, क्षर और अक्षर, दोनों प्रकार की आत्माओं के स्वामी किस प्रकार से हैं, ये इस अध्याय में बताया गया है। हालांकि अध्याय छोटा है, 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, बट तब भी यह अध्याय भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, पुरुषोत्तम योग। तो ये अध्याय में हमने 14 चैप्टर में देखा था कि प्रकृति के तीन गुणों के कारण जीव जो है वो इस संसार में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। और भगवान ने 14 अध्याय के लास्ट में ऐसा डिस्कस भी किया था कि अगर हम भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करते हैं, उस श्लोक का 26वें श्लोक में भगवान ने बताया था, माम चाहिए व्यभिचारेणा, अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो वो तीनों गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था, दिव्य अवस्था में पहुँच सकता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे थे। तो इस 15वें अध्याय में यह बताया है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार से वैराग्य की भी आवश्यकता है, संसार से डिटैचमेंट की आवश्यकता है। वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, की संसार में हमें इंद्रिय भोग की इच्छा से दूर रहना। अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो ये डिटैचमेंट को बढ़ाना होगा, और उस डिटैचमेंट को बढ़ाने के लिए भगवान इस अध्याय में एक तुलना यूज करते हैं। इंग्लिश में उसको मेटाफर बोला जाता है। तो भगवान उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कैसे हम संसार से डिटैच रहेंगे, इस संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करते हैं। इस संसार की तुलना भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष, मतलब बरगद के पेड़, बैनियन ट्री से इसकी तुलना करते हैं। और भगवान इस बैनियन ट्री के बारे में 5 श्लोक में भगवान इस भौतिक संसार का डिटेल बताते हैं, भौतिक संसार में क्या क्या वस्तुएं हैं और कैसे इस संसार से डिटैच रहना चाहिए। और लास्ट के 15 श्लोक, 6 से लेकर 20 श्लोक तक पुरुषोत्तम योग है। उसमें भगवान अपने अपने पर्सनालिटी और जीवों के बारे में, किस प्रकार से वो जीवों को मेंटेन करते हैं और कैसे इस संसार से आध्यात्मिक संसार में जाया जा सकता है, ये सब कुछ अगले 15 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो शुरू के 5 श्लोक भौतिक संसार का बरगद के वृक्ष के जैसा वर्णन, और उसके बाद के श्लोक पुरुषोत्तम योग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पहला श्लोक हम देखेंगे, भगवान बता रहे हैं ये संसार एक ऐसा शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष को बरगद का वृक्ष बोलते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और छंदाम से यस्य पर्णानि, इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, वैदिक छंद जो हैं वो इस वृक्ष की पत्तियां कहलाते हैं। और भगवान इसमें बता रहे हैं कि यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है, क्योंकि इस वृक्ष में पूरे संसार का स्वरूप दिया गया है। तो इस वृक्ष को जो समझ लेता है, ऐसा माना जाता है कि वो वेदों का ज्ञाता बन चुका है। तो अगर भक्ति के बारे में जब हमें पता चलता है, तो फिर हमें ये प्रश्न आता है कि वेदों का क्या महत्व है। अगर केवल भक्ति प्राप्त करना जीवन का महत्व है, तो वेद का क्या मतलब है? तो इस अध्याय में बताया जाता है कि वेदों का मतलब भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करना ही है। वेद, क्योंकि भगवान ही वेदों के फाइनल डेस्टिनेशन है, भगवान ही वेदों के ज्ञाता है, भगवान ने ही वेदों को कंपाइल किया है, तो वेदों का लक्ष्य भी भगवान को जानना ही है। तो भौतिक संसार से अगर किसी को फ्री होना है, तो उसको आध्यात्मिक संसार में जाने की सबसे पहले इच्छा को दृढ़ करना होगा, तब तो वो भौतिक संसार से डिटैचमेंट प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा 15 अध्याय ऐसा बता रहा है कि सारे वैदिक शास्त्रों का स्तोत्र है भगवान कृष्ण, तो वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य भी है भगवान कृष्ण को समझना। इसलिए जो कृष्ण भक्ति में है वो ऑलरेडी वेदों को जानता है। तो इस पहले अध्याय का तात्पर्य भी, पहले श्लोक का तात्पर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि ये पूरा भौतिक संसार बरगद के वृक्ष जैसा है, और जो भी संसार में कर्म कांड में डूबे हुए हैं, सकाम कर्मों में जो व्यक्ति डूबे हुए हैं, उनके लिए इस वृक्ष की शाखाएं अनंत रूप से फैली हुई हैं, और ये वृक्ष की जड़ें भी बहुत डीप हैं, क्योंकि इसकी जड़ें वास्तविकता में अनंत फैली हुई हैं। इन जड़ों को सामान्य तरीके से नहीं काटा जा सकता है, और व्यक्ति जड़ें, और जड़ें बड़ी होने के कारण शाखाएं भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हर एक शाखा से दूसरे शाखा में व्यक्ति कूदता रहता है, जाता रहता है, उसके जन्म लगातार होते रहते हैं। तो जो व्यक्ति इस वृक्ष के बारे में समझने का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो इसको समझेगा वो इस वृक्ष को काट सकता है। पहले इस वृक्ष को जो समझेगा वो वैराग्य की तलवार से, स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट की तलवार से इस वृक्ष को काट सकता है। इसलिए वृक्ष को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसार से वैराग्य के हम इस वृक्ष के बारे में डिस्कस करके करेंगे, और अगले 15 श्लोक में भगवान के प्रति भक्ति को डेवलप करेंगे अगले इस 15 श्लोकों के द्वारा। तो इस अध्याय में 2 पर्पज हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट फॉर कृष्णा। और इस वृक्ष से एक और वस्तु हम समझ सकते हैं कि इस वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, इसकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, और ये वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ऐसे वृक्ष का हमें कोई अनुभव सामान्य जीवन में नहीं मिलता है, सामान्य जगह सामान्य तरह से नहीं मिलता है, परंतु इस वृक्ष का अनुभव हम देख सकते हैं पेड़ के, ऐसा पेड़ हमें पाया जाता है। कभी हम अगर हम तालाब के किनारे जाएं, तो तालाब के प्रतिबिंब में, परछाई में अगर हम देखते हैं, तो तालाब के किनारे जो पेड़ रहता है, उस पेड़ की जब परछाई को देखते हैं, तो उस परछाई में उल्टा दिखाई देता है, उसकी जड़ें ऊपर और पत्तियां नीचे। तो इस प्रकार का जो भौतिक संसार का ये जो वृक्ष बताया जा रहा है, ये भी उसी तरह से है, ये आध्यात्मिक संसार का जो वास्तविक वृक्ष है उसकी परछाई है। इसलिए जिस तरह से इस संसार में वैरायटी है, उसी तरह से आध्यात्मिक संसार में भी वैरायटी है। इससे हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक संसार 0 नहीं है, शून्य नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे केवल ब्रह्म ज्योति है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब में इतनी सारी वैरायटी है, तो वास्तविक वृक्ष में भी वैरायटी होनी चाहिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार वास्तविक है और ये उसका प्रतिबिंब है, क्योंकि ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी ओरिजिनल होता है। तो इसलिए भौतिक संसार भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, और आध्यात्मिक संसार में वास्तविक वृक्ष पाया जाता है। और वेदों को जानने का मतलब है कि वेदों को इस प्रकार से जानना है कि जिससे हम संसार से अटैचमेंट खत्म कर सकें, वेदों के ज्ञान रूपी तलवार से हम संसार को डिटैच हो सकें। और अभी दूसरे श्लोक में इस तरह से आता है कि ये संसार अधःशोद्धम पश्यतास्तस्य शाखा, वृक्ष की शाखाएं ऊपर से नीचे तक फैली हुई हैं, गुण प्रबुद्धा, जैसे हर वृक्ष पानी के द्वारा पोषित होता है, सामान्यतः वृक्ष को जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वो जमीन से पानी को इकट्ठा करते हैं, इसलिए वृक्षों का नाम होता है पादप। पादप मीन्स पाद, मीन्स पैर, अप मीन्स पानी पीना। तो जो वृक्ष अपने जीवन के लिए पैरों से पानी लेते हैं उसको पादप बोला जाता है। तो जिस प्रकार से सामान्य वृक्ष पानी के द्वारा पोषित होते हैं, उसी प्रकार से ये वृक्ष जो है ये वास्तविकता में तीनों गुणों के द्वारा पोषित होता है। जो तीन गुण हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, उन तीनों गुणों के द्वारा ये वृक्ष जो है पोषित होता है। और इस वृक्ष की टहनियाँ, टहनियाँ मतलब शाखाएँ, इंद्रिय के विषय हैं, अलग अलग इंद्रिय विषय मतलब अलग अलग इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे खाने के लिए अच्छा भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और इसी तरह से हर इंद्रिय के लिए अलग अलग विषय है। तो वो इस वृक्ष की टहनियाँ की कहलाती हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी जाती हैं, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस श्लोक में समझने के लिए है कि इस संसार को पोषित करने के लिए तीन गुण हैं, इसीलिए तीन गुणों के ऊपर जाने से हम इस संसार से बच सकते हैं। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में हैं, नीचे निचले योनियों में जो शाखाएं हैं उसमें विभिन्न योनियां हैं, मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ती, बिल्ली, ये सभी शाखाओं के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ऊपर के हिस्से में ऊपर के लोक पाए जाते हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इस प्रकार के लोक पाए जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं वृक्ष की कुछ शाखा में अगर पानी पहुंचता है तो वहां पे तेजी से वृद्धि होती है। इसी तरह से अलग अलग गुण अलग 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 जीवों को प्रभावित करते हैं। कहीं पे तमोगुण बहुत प्रभावशाली होता है, कहीं पे रजोगुण प्रभावशाली होता है, कहीं पे सत्वगुण प्रभावशाली होता है। हमने पिछले अध्याय में डिस्कस भी किया है कि किस किस जगह पे किस प्रकार से गुणों का प्रभाव होता है। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं, विभिन्न गुणों के प्रभाव विकास से हम इस प्रकार के इंद्रियों का विकास करते हैं। और ये शाखाएं जो हैं, शाखाओं के सिवे इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, और टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग और द्वेष हैं, राग और द्वेष रूपी जड़ें हैं इस संसार की। और पूरा संसार हमने देखा था सातवें अध्याय में, इच्छा और द्वेष के द्वारा पूरा संसार पोषित किया जाता है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। हम किसी चीज को प्रेम करते हैं, किसी को द्वेष करते हैं, तो धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गॉड जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो कि चारों दिशाओं में फैली हुई है। इसकी वास्तविक जड़ ब्रह्मलोक में है, क्योंकि ब्रह्मलोक से वृक्ष प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब जो है सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मलोक है, तो वहां पे इसकी जड़ें हैं। और उसकी बाकी जड़ें मेन जड़ ब्रह्मलोक में है, बाकी जड़ें और भी जगह पे हैं, मृत्यु लोक में बाकी जड़ें हैं। और मृत्यु लोक मतलब ये भौतिक संसार, ये धरती, यहाँ पे बहुत सारी जड़ें हैं इसकी जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। अभी अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगले दो श्लोकों में, कि इस संसार को, इस वृक्ष को वास्तविक रूप से इस संसार में नहीं देखा जा सकता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि इस संसार का वास्तविक अनुभव जो है, इस वृक्ष का वास्तविक अनुभव इस संसार में पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इस वृक्ष का प्रारंभ कहाँ है, इसका अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। संसार के अंदर है कि इस वृक्ष को समझना बहुत मुश्किल है। तो इस वृक्ष को हमें अगर काटना है तो हमें केवल एक ही शस्त्र है, एक तलवार है हमारे पास, डिटैचमेंट, अनासक्ति या वैराग्य। वैराग्य की तलवार से हमें इस वृक्ष को काट गिराएं, और उसके बाद ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, ततः पदम तत्मर परिमार्गितव्यम, ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने से दूसरी बार वापस नहीं आना पड़े, दूसरी बार लौटना नहीं पड़े, जहाँ पे उस भगवान की शरण ग्रहण की जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो वृक्ष को हमें डिटैचमेंट के द्वारा काट सकते हैं, उसके बाद हमें भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के पास जाना चाहिए। तो केवल एक ही तरीका है इस संसार को काटने का, असंग शस्त्रेण जड़ेण छित्वा। इसकी जड़ें ऊपर हैं और विस्तार नीचे की तरफ विरुद्ध दिशा में होता है। तो वृक्ष के भौतिक विस्तार में जो व्यक्ति फंस जाता है उसको पता नहीं चलता है कि वृक्ष कितने दूर तक फैला है। दैट मीन्स एक बार अगर हम सकाम कर्म की योनियों में फंस जाते हैं तो फिर व्यक्ति लगातार योनियों में भटकता रहता है। कई बार लाखों जन्म करोड़ों जन्म भी निकल सकते हैं व्यक्ति योनियों में लगातार भटकता रहता है, और इस वृक्ष का प्रारंभ भी कहीं नहीं देखा जा सकता है। पर अगर हम खोजें, कोई व्यक्ति दिमाग लगा के खोजे तो समझ सकता है कि वृक्ष कहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पिता ये हैं, हमारे दादा ये हैं, परदादा ये हैं, उस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में ब्रह्मा सभी के पिता हैं, और ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु ने इस भौतिक संसार का निर्माण किया है। तो इस तरह से अनुसंधान करने से और शास्त्रों को देखने से हमें पता चल सकता है, वेदों के द्वारा भी पता चल सकता है कि इसका अस्तित्व क्या है। और अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये संसार से पार हम भगवत धाम में जा सकते हैं। तो असंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, क्योंकि हमारा इस संसार में भोग करने की इच्छा के कारण हम यहाँ पे आते हैं। तो जब तक हमारी भोग करने की इच्छा कम नहीं होती है और संसार से हम विरक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक संसार से निकलने का कोई मतलब नहीं, और हम निकल भी नहीं सकते। इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ के हमें डिटैचमेंट प्राप्त करना चाहिए, कैसे ये भौतिक संसार जो है ये यूजलेस संसार है, और किस प्रकार से ये कार्बन कॉपी जैसा है, बैड कार्बन कॉपी। आध्यात्मिक संसार बहुत अच्छा है, उसकी कार्बन कॉपी ये भौतिक संसार है। ये हमें रियलाइज करना चाहिए और भक्तों के संग में जाके भगवान को समर्पण करना चाहिए, जिससे इस असंग के डिटैच सोर्ड ऑफ डिटैचमेंट से हम इस संसार को काट सकें। अभी पाँचवा श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम जस्ट शॉर्ट में देखेंगे इस वृक्ष के बारे में जो हमने डिस्कस किया। ओरिजिनल वृक्ष जो है वो आध्यात्मिक संसार में है। आध्यात्मिक संसार का जो वृक्ष है वो इच्छाओं पे आधारित है, डिजायर्स। जैसे अभी हम देखें कि अगर हम कोई एक चीज़ के सामने कांच रखते हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, उस चीज़ का प्रतिबिंब दूसरी तरफ दिखाई देता है। तो उसी तरह से है कि आध्यात्मिक संसार का जो प्रतिबिंब अगर हम इच्छाओं के ऊपर रखते हैं तो वो इच्छाएं उस शीशे के जैसे कार्य करती हैं, मिरर के जैसे कार्य करती हैं, और उस शीशे से जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये भौतिक संसार एक उल्टे वृक्ष के जैसा दिखाई देता है। तो ये भौतिक इच्छा जो है वो इस भौतिक वृक्ष का कारण है, और इस वृक्ष के जड़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। दैट मीन्स ये ब्रह्मलोक से प्रारंभ हो रहा है, ब्रह्मलोक से इस वृक्ष को प्रारंभ हो रहा है, और इसकी कुछ दूसरी जड़ें, एक तो मेन जड़ें हैं और दूसरी सेकेंडरी जड़ें हैं, ये जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और हर दिशा में फैली हुई हैं। और इस जो व्यक्ति सकाम कर्म में है, इच्छा और द्वेष इसकी वो भी हैं सहायक जड़ों को, इच्छा द्वेष बोला जा सकता है। इसकी ब्रांचेस जो हैं, अलग अलग जो शाखाएं हैं वृक्ष की, ऊपरी शाखाएं हैं, नीचे की शाखाएं हैं, तो ये ऊपर और नीचे के लोक हैं। इसकी पत्तियां वैदिक मंत्र, वैदिक छंद हैं। ट्विक्स मतलब टहनियां जो हैं वो इंद्रिय के विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स। और ब्रांच की जो कोना है, टिप ऑफ द ब्रांच, वो इंद्रिय है। तो इंद्रिय विषयों का संग होता है तो व्यक्ति इस संसार को भोग करता है। इसलिए ब्रांच का टिप सेंसेस हैं और टहनियां जो हैं वो इंद्रिय के विषय हैं। और इसके वृक्ष के फल क्या कहलाते हैं, इस वृक्ष के फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इंद्रिय और इंद्रिय विषय से मिलके ये चार प्रकार के फल जनरेट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस संसार को पोषण कहाँ से मिलता है, तीन गुणों के द्वारा। अभी चौथे श्लोक में ही हमने देखा कि इस संसार को काटने के बाद हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमें भगवान के बारे में बताएं, क्योंकि भगवान कृष्ण वो मूल हैं जिससे सब कुछ निकला हुआ है, और भौतिक जगत के विस्तार के कारण भी भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो आध्यात्मिक गुरु से प्रॉपरली सुन के, अपने और भगवान के बीच के संबंध को जान के अगर भगवान को समर्पण करते हैं और गलत संग को छोड़ के भगवान की प्रभुता को स्वीकार करते हैं, तब हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से भगवान को सरेंडर करना है, वो प्रोसेस पांचवें श्लोक में दी गई है। पांचवां श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करिएगा। पांचवां श्लोक इसमें से मेमोराइजेशन श्लोक है, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वय विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें भगवान को या गुरु को सरेंडर करना है। निर्माण मोह, संसार की झूठी प्रतिष्ठा और मोह, और जित संग दोषा। जित संग दोषा मतलब संसार के कुसंगति को जिन्होंने जीत लिया है, जिसने संसार के झूठी सम्मान पाने की इच्छा को जीत लिया है, मोह को भी जीत लिया है और संसार के गलत संग को जीत लिया है, और जिसने आध्यात्मिक ज्ञान में आश्रय लिया है। आध्यात्मिक ज्ञान जो कि हमेशा उपस्थित है, शाश्वत है, जो उसको जानता है, और जो विनिवृत्त कामा, इंद्रिय भोग से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। विनिवृत्त कामा मतलब उसको भौतिक संसार में इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं है, और संसार के द्वंद्व से भी वो विमुक्त हो चुका है। द्वंद्व मतलब सुख दुख सर्दी गर्मी, इनसे भी विमुक्त हो चुका है, सुख दुख संगे, और गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तक। ऐसा व्यक्ति पदम अव्यय मतलब ऐसी जगह पे भगवत धाम में जाता है जो कि शाश्वत स्थान है, वो स्थान शाश्वत है हमेशा। तो ऐसे लोग जो कि झूठी झूठी प्रशंसा से मुक्त हैं, मोह से मुक्त हैं, और भौतिक संग से भी मुक्त हैं, और जो शाश्वत रूप से आध्यात्मिक सत्य में स्थित हैं, इंद्रिय भोग से फ्रस्ट्रेट मतलब रिटायर हो चुके हैं, इंद्रिय भोग करने की उनको इच्छा नहीं है, और सुख दुख हानि लाभ इस सारे द्वंद्व से बाहर हो चुके हैं, वो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला शरणागति का लक्षण बताया गया है निर्माण मोह। व्यक्ति को घमंड नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि घमंड जो है वो हमें हमेशा शारीरिक चेतना में लेके आता है। तो घमंड को बोला जाता है पफ्ड राइस, पफ्ड अप। आपने सुना होगा पफ्ड राइस, पफ्ड राइस मतलब फूला हुआ चावल, जिसको मुड़ी बोलते हैं, ममरा बोलते हैं, तो वो फूला हुआ राइस होता है, राइस के अंदर हवा भर जाता है। तो फॉल्स प्राइड उसी तरह से है, हवा हमारे अंदर हवा भर जाती है। जैसे फॉल, कभी आप एक चावल लीजिए, एक सिंपल चावल लीजिए और एक फूला हुआ चावल लीजिए, पफ्ड राइस, दोनों को फूकिए, देखिए कौन पहले जाता है, पफ्ड राइस पहले हो जाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति घमंडी होते हैं, जिनके अंदर मिथ्या अहंकार होता है, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले पतित हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल हवा भरी हुई है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये मिथ्या अहंकार हमारे हमारे अंदर हवा हवा के जैसा कार्य करता है, और व्यक्ति ज़्यादा समय तक आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता है, पतित हो जाता है। और जीव इस प्रकार से घमंड में है कि वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही संसार को एंजॉय करने वाले हैं, ये इस प्रकार से जीव अहंकार में है। और इसका सॉल्यूशन है कि हमें ये नॉलेज प्राप्त करना चाहिए कि भगवान जो है वो प्रभु हैं और हम उनके दास हैं। और इस घमंड की शुरुआत तभी होती है जब भगवान को हम शरणागति करते हैं। ये घमंड कैसे होता है? इल्यूजन के कारण, जो हमने डिस्कस किया। इल्यूजन मतलब हम समझ नहीं पाते कि हम शरीर नहीं हैं। हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं तो उससे जनरेटेड समस्याएं हमारे पास आती हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा घर जो है उसके मालिक हम हैं, हमारा देश भी है, हमारी कम्युनिटी है, इन सब को लेके हम घमंड को प्राप्त होते हैं और ड्यूलिटी को प्राप्त होते हैं। और जो लोग विनिवृत्त काम है, भौतिक इंद्रिय भोग में उन लोगों को कोई इच्छा नहीं होती है, भौतिक इंद्रिय भोग को अपने आप वो लोग छोड़ चुके हैं और भगवान को समर्पण करते हैं। इसके बाद छठवें श्लोक में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, छठवें से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक, भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में कैसे जाया जा सकता है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो छठवां श्लोक में भगवान आध्यात्मिक संसार की तुलना करते हैं कि ऐस मेरे परम धाम में ना तो सूर्य ना चंद्रमा, वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती है लाइट के लिए, ना तो अग्नि और ना बिजली, और जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो लोग फिर से वापस नहीं आते हैं। ये पाँचवा श्लोक, छठवां श्लोक और सातवां श्लोक, तीनों श्लोक याद करने के लिए है, मेमोराइजेशन श्लोक है ये। तो भगवान का जो धाम है वहाँ पर सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश के लिए, भगवान के शरीर की जो रोशनी है उसी से प्रकाशित होता है, और वहाँ जाने पर लोग इस संसार में वापस नहीं आते हैं। जब तक व्यक्ति इस संसार में है तब तक वो बद्ध अवस्था में है, परंतु जैसे ही इस भौतिक संसार के वृक्ष को वो काट लेता है, आध्यात्मिक संसार में पहुंचता है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। इस प्रकार की सूचना से व्यक्ति को मुग्ध हो जाना चाहिए, मतलब एक्साइटेड होना जाना चाहिए, और शाश्वत जगत में जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के द्वारा इस प्रतिबिंब को अपने आप से अलग करना चाहिए। जैसे मिथ्या है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, वास्तविकता में हम आत्मा हैं। तो ज्ञान के द्वारा हमें इस तथ्य को जानना चाहिए और खुश होना चाहिए कि हम कैसे भगवान के धाम में जा सकते हैं इस ज्ञान और भक्ति का प्रयोग करके। यदि कोई कृष्ण भक्ति को ग्रहण करे तो इस संसार से छूटने की संभावना होती है। तो ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए, ऐसा समाज खोजना चाहिए जहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, वहाँ भक्ति सिखाई जाए। और केवल यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, केवल सैफ्रॉन ड्रेस पहनने से ये जरूरी नहीं है कि हम भौतिक जगत से छूट जाएंगे, या केवल अपना हेड सेव कराने से जरूरी नहीं कि भौतिक भौतिक जगत का आकर्षण हमारा खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सैफ्रॉन ड्रेस केसरिया वस्त्र पहनते हैं, भारत में बहुत सारे इस प्रकार से साधु होते हैं, पर यहाँ पे समझाया जा रहा है कि केवल केसरिया वस्त्र पहनना वो नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है कि हमने भौतिक संसार को जीत लिया। क्योंकि भौतिक संसार को जीतना केवल ड्रेस बदलने से नहीं होता है, मन हृदय के अंदर शुद्धता प्राप्त करने से होता है, भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होने से होता है। बहुत सारे साधु हैं जो कि सैफ्रन ड्रेस पहनते हैं परंतु अनफॉर्चुनेटली गलत गलत कार्य भी करते हैं। बाद में जब समाज में ड्रेस आती है, समाज में जब न्यूज आती है, तो लोगों का धर्म के प्रति से विश्वास कम होता है। तो भौतिक संसार से आकर्षण खत्म करना और आध्यात्मिक आसक्ति प्राप्त करना साधु का लक्षण है। केसरिया वस्त्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है साधु के लिए, परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवत भक्ति के प्रति आसक्ति को प्राप्त करना। और भगवान इसमें बता रहे हैं कि मेरा संसार है जो कि आध्यात्मिक संसार, जो कि सबसे ऊंचा है, टॉप मोस्ट परमम। सारे आध्यात्मिक संसार भगवान के आंतरिक शक्ति से हैं और भौतिक संसार से बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। उस संसार में केवल शरणागति के द्वारा पहुंचा जा सकता है। हम क्यों उस संसार में जा सकते हैं कि प्रश्न आता है कि हम क्यों वहां पे जाएं? तो हमें आध्यात्मिक संसार में जाने की जरूरत क्या है? तो भगवान उसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, क्योंकि हमारा तो अधिकार है, जैसे पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता है, नेचुरली बेटे का अधिकार होता है पिता की संपत्ति के ऊपर। तो हमारा अधिकार है क्योंकि भगवान का धाम जो है वहां पे ही हम रहते थे, भगवान के अंश हैं हम, भगवान के पुत्र हैं, तो हम वहां पे ही रहते थे और अभी वहां से यहाँ आ गए हैं। तो हमारा अधिकार है वहां पे जाना, जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवत धाम जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो भगवान साथ में श्लोक में बता रहे हैं कि जीव जो है वो मेरे ही अंश हैं, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातनन। जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं और सारे जीव सनातन हैं, जीव का कभी भी विनाश नहीं होता है, सभी जीव सनातन हैं। और मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव जो हैं ये मन और पांच इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और इसमें मन भी सम्मिलित है। बद्ध जीवन के कारण ये जीव छह इंद्रियों से घोर संघर्ष करते हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवत धाम हमारा घर है, जहाँ से हम आए हैं, तो वहाँ पे जाना हमें हमारा अधिकार है और वहाँ पे जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस श्लोक में क्लियर होता है कि ऐसा नहीं है कि जीव अलग है, भगवान और जीव का कोई संबंध नहीं है। भगवान क्लियरली बता रहे कि जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। तो जीव हमेशा से भगवान का अंश रहता है, ऐसा नहीं कि अभी अंश है, जब मुक्ति को प्राप्त होंगे तो भगवान बन जाएंगे, हमेशा से भगवान के अंश रहते हैं। जैसे विष्णु तत्व, राम, नृसिंह, कृष्ण, ये सभी हमेशा रहते हैं और जीव तत्व भी हमेशा रहते हैं, तो हम हमेशा उनके दास हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा नरसिंह देव के दास हैं, हनुमान हमेशा भगवान राम के दास हैं, इस तरह से हम जीव जो है हमेशा विष्णु तत्व के दास होते हैं। और हमारे पास एक फ्री विल होती है, एक इच्छा होती है जिसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे। उस इच्छा के द्वारा हम इस संसार में आते हैं और इस संसार में आने के बाद जब हमें मन, बुद्धि, इंद्रियां प्राप्त होती हैं, तो उसके द्वारा हम इस संसार में भोग करने की इच्छा करते हैं। परंतु वास्तविकता में ये संसार हमारा घर नहीं है। भौतिक संसार हो सकता है, भौतिक शरीर का घर हो सकता है, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। आत्मा जो है वो आध्यात्मिक संसार से आती है। और इस श्लोक में कर्षति शब्द उपयोग किया गया है। कर्षति शब्द का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। हम सभी जानते हैं कि हर योनि में अलग अलग स्ट्रगल है, मनुष्य योनि में बहुत स्ट्रगल है, जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलने के लिए, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, बहुत सारे क्लेश हैं जिससे कि हमें लगातार फाइट करनी पड़ती है। तो भगवान इसलिए यहाँ पे उस शब्द उपयोग कर रहे हैं कर्षति। कर्षति मतलब व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल करने का मेन कारण क्या है? मन के द्वारा स्ट्रगल होता है ज्यादातर स्ट्रगल, क्योंकि इस तरह से आता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जब गुडनेस में होता है, सत्वगुण में होता है, तो अच्छे कार्य करता है। मन जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्य बहुत कठिन होते हैं, ट्रबल, दूसरों को ट्रबल पैदा करते हैं। और जब मन तमोगुण में होता है तो वो शरीर को पशु योनि में या नरक में लेके जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमने मन को कितना नियंत्रित किया है, वो तो मन हमारा किस गुण में है, उसके आधार पे हम इस संसार में प्रवेश करते हैं और संसार में कार्य करते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मन हमें इस संसार में घुमाता रहता है, वो आठ आठ में, नौ में, दस में इस प्रकार से डिटेल में बताया गया है। आठवें श्लोक में बताया है, शरीर में यदा आपनोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयत्। जिस प्रकार से जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, किस प्रकार से ले जाता है? जिस प्रकार से वायु अगर किसी गार्डन में से जाती है तो गार्डन के सुगंध को अपने साथ लेके जाती है। तो इसी प्रकार से जीव के एक जीवन में जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस और वो क्रियाओं के जो इंप्रेशन होते हैं, वो उसके मन बुद्धि पे रहते हैं। और जो उसकी सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार वो शरीर खत्म होने के बाद आत्मा को लेके दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है अलग अलग जगह पे, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को लेके जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसको त्याग के दूसरे शरीर में आता है। और डिटेल नौवें अध्याय नौवें श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के, जैसा उसने पिछले जन्म में इंप्रेशन था उसके पास, उस प्रकार के कान, नाक, आंख, जीव, त्वचा प्राप्त करता है। और ये अंग जो है मन के चारों तरफ हैं, जैसी मन की अवस्था है उसी प्रकार का शरीर मिलता है। अगर मन की अवस्था तमोगुण में है तो पशु शरीर मिलता है, रजोगुण में है तो कुछ और तरीके का शरीर मिलता है, सत्वगुण में है तो कुछ और तरीके का शरीर मिलता है। और जैसा शरीर मिलता है वैसे ही इंद्रियाँ उस व्यक्ति के चारों तरफ रहती हैं। और मूर्ख ना तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग सकता है, ना वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन किस प्रकार से शरीर का भोग करता है। परंतु जिसकी आंखों में भगवद्गीता का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मन हमें अलग अलग योनियों में लेके जाता है। वास्तविकता में हमने डिस्कस किया अभी सातवें श्लोक में कि मन के कारण हम इस संसार में स्ट्रगल करते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड के द्वारा। छठवें अध्याय में भी हमने देखा था, जिसने मन को जीत लिया है वो मन उसके लिए मित्र बन जाता है, नहीं तो मन उसका शत्रु होता है। तो यहाँ पे आठ नौ दस ग्यारह इन श्लोकों में, आठ नौ दस और ग्यारह, हाँ चार श्लोकों में बताया है कि किस प्रकार से मन हमें इस संसार में भटकाता है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि वायु जिस प्रकार से गंध को लेकर जाती है उसी प्रकार से मन हमें लेके जाता है, आत्मा को लेके जाता है। और जिस प्रकार से मन की चेतना होती है उसी प्रकार से उसको इंद्रियां डेवलप होती हैं, आँख, कान, नाक, ये सब, और उन इंद्रियों के द्वारा वो उस प्रकार के शरीर से सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। और फिर अगली उस जन्म में उसके जो इंप्रेशन होते हैं उसके आधार पर उसको अगला जन्म इस तरह से चलता रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार कोई मनुष्य बना तो उसको फिर से मनुष्य जन्म जन्म मिलेगा, उसके कर्मों के आधार पर उसको पशु जन्म मिल सकता है, 84 लाख योनियों में से कुछ भी मिल सकता है। तो जो ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास, जिनकी आंखें ज्ञान के चक्षु से खुली हुई हैं, वो देख पाते हैं कि किस प्रकार से जीव अपना शरीर त्याग करता है और किस प्रकार से तीनों गुणों के अधीन वो लगातार दुख प्राप्त करता रहता है। मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं, बुद्धिमान लोग देख पाते हैं। ऐसे योगी जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, वो ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु जिन जिनके मन विकसित नहीं है, जिनके मन नियंत्रित नहीं है, वो नहीं देख पाते हैं, प्रयत्न करने से भी पता नहीं चलता है। जैसे हम भी जब इस्कॉन में नहीं आए थे तो हमें भी लगता था कि हमारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, जब इस्कॉन में आते हैं तब पता चलता है, नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जब हम हरे कृष्ण हवन करना चालू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह है, क्योंकि तब वो अनर्थ हमें दिखना चालू होते हैं। पहले तो हमारे साथ ऐसा होता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कुछ जानते ही नहीं है तो हम माया के फौजी जैसे हैं, मन मौजी माया का फौजी, तो माया के किंगडम में हम मजे लेते रहते हैं। पर जब हमें पता चलता है कि नहीं, ये वास्तविकता नहीं है, तब हमें पता चलता है कि मन हमें किस प्रकार से भटका रहा है। तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी हैं वो सब स्पष्ट रूप से देखते हैं, परंतु जिनके मन विकसित नहीं है वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि ये क्या चल रहा है। इस प्रकार से मन को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद अगले 4 श्लोक जो हैं उसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार से भगवान हमें इस संसार में और आध्यात्मिक संसार में मेंटेन करते हैं। तो बाद में श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो तेज संसार में जो भी तेज है वो तेज मुझसे आता है, मैं उस तेज का स्तोत्र हूँ। कौन कौन सा तेज इस संसार में है? यद आदित्य गतम तेजो, सबसे बड़ा तेज संसार में हम देखते हैं सूर्य देव। सुबह से करोड़ों साल से सूर्य देव जो है लगातार पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। और सूर्य के अलावा दो दो और तेज हैं, चंद्र चंद्र का तेज और अग्नि का तेज। तो सूर्य का तेज जो कि पूरे जगत को, अखिल जगत को अपने प्रकाश से ढकता है, प्रकाश प्रकाश फैलाता है और अंधकार को खत्म करता है, ये अखिल जगत को प्रकाश फैलाने वाला सूर्य का तेज भगवान से आता है। और चंद्रमा और अग्नि ये भी भगवान से आता है। हम समझ सकते हैं अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो संसार खत्म हो जाएगा। अगर सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है तो संसार एक कुछ समय के लिए भी नहीं चल सकता है। अंधेरे में या फिर अग्नि नहीं हो तो कोई व्यक्ति कुछ पका नहीं पाएगा, कोई लाइट उपयोग नहीं कर पाएगा, वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे और संसार खत्म हो जाएगा। तो भगवान इस तरह से संसार को मेंटेन कर रहे हैं। आगे भगवान बताते हैं इससे भी ज़्यादा, जैसे अगर चंद्रमा नहीं होगा तो हम वेजिटेबल्स नहीं होंगे, वेजिटेबल फूल ये सब चंद्रमा की प्रकाश से उनके अंदर जूसेस आते हैं। अच्छा, वेजिटेबल का जूस जो है वो चंद्रमा के द्वारा प्रदान किया जाता है। चंद्रमा एक नक्षत्र है, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के समान है। सूर्य सूर्य के उगते ही साथ जीवों के काम चालू हो जाते हैं, मनुष्य के कार्यकलाप चालू हो जाते हैं। भोजन पकाने के लिए लोग अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं, अग्नि से और भी काम किए जाते हैं। इसलिए सूर्य अग्नि और चंद्रमा की चांदनी जीवों को अच्छे लगते हैं, इसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। और ये तीनों भगवान से निकल के आते हैं। इसके बाद भगवान आगे बताते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं अलग अलग लोकों को, जैसे धरती लोक है, बुध शुक्र ये सारे लोक हैं, भगवान बोलते हैं मैं उसके अंदर प्रवेश करता हूँ और उसको उसकी कक्षा में स्थापित करता हूँ। जैसे धरती का वजन कितना ज़्यादा है, कई मिलियन टन्स हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है, परंतु ये पूरा प्लेनेट हम जानते हैं कि हवा में घूम रहा है। किस प्रकार से ये प्लेनेट हवा में घूम रहा है भगवान बताते हैं मैं इसके अंदर घुसा हूँ। तो जैसे हमारा शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो हमारा शरीर घूमता है, जबकि शरीर अपने आप में डेड है, मरा हुआ है, परंतु आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर चल रहा है। तो जिस तरह से ये शरीर आत्मा की उपस्थिति से चल रहा है, वैसे ही ये संसार परमात्मा की उपस्थिति से चल रहा है। अगर परमात्मा को इस संसार से हटा दिया जाए तो संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार अपने आप में मृत है, परमात्मा की उपस्थिति से ये संसार चलता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं लोकों में प्रवेश करता हूँ, प्रत्येक लोक में, हर प्लेनेट में भगवान प्रवेश करते हैं और मेरी शक्ति से सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में रहते हैं, और मैं चंद्रमा बन के वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि मैं ही चंद्रमा बन के जीवों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। और इसके भी आगे भगवान हमें कैसे मेंटेन करते हैं, हम जो खाते हैं भगवान वैश्वानर नाम की अग्नि के द्वारा हम जो खाते हैं उस सभी को भगवान पचाते हैं। तो मैं सभी जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ वैश्वानर, और मैं श्वास प्रश्वास के द्वारा 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अगर भगवान नहीं होंगे तो हम खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये भगवान बहुत कृपालु हैं कि हमारे हृदय के अंदर, पेट के अंदर उपस्थित हैं, वो हमारी जठराग्नि, पेट के अंदर जो अग्नि है वो भगवान के वैश्वानर रूप के द्वारा आती है। जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती तो भूख नहीं लगती है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो भूख लगती है। जैसे कई बार लोग इनडाइजेशन के शिकार होते हैं, उनके अंदर ये वैश्वानर अग्नि जो है ये वीक होती है, तो वो जो खाते हैं वो पचता नहीं है। तो भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में मदद करते हैं, और प्राण वायु के रूप में भी भगवान उपस्थित रहते हैं, और प्राण वायु के द्वारा भगवान हमारे प्राण को, आत्मा को शरीर के अंदर रखते हैं और बैलेंस्ड अवस्था में शरीर को रखते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर से डेली कार्य कर सकें। इसके आगे भगवान बता रहे हैं कि सबके हृदय में मैं स्थित होता हूँ, और मेरे द्वारा ही स्मृति मतलब याददाश्त आती है, ज्ञान आता है और भूलते हैं। जैसे रात में सोते समय अगर भगवान हमारी चीज़ों को भुलाएंगे नहीं तो हम सो नहीं पाएंगे, और सुबह जब हम उठते हैं तो भगवान उन्हीं चीज़ों को फिर से याद कराते हैं। तो रात में भुलाते हैं, सुबह याद कराते हैं। तो भगवान स्मृति भी देते हैं, अपोहनम भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ भगवान से आता है। और वेदों को भगवान, वेदों को जानने वाले हैं, और वेदों को कंपाइल भगवान ने ही, वेदों को बनाया है, वेदों के राइटर जो हैं वो भगवान हैं। और वेदों के जानने वाले भी भगवान हैं, परमेश्वर के रूप में भगवान हृदय में भी होते हैं और हमें स्मृति ज्ञान अपोहन ये भगवान प्रदान करते हैं। तो ये 15वां श्लोक भी इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए। वेदों में बहुत सारी वस्तुएं हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, जो कि जीवों की चेतना को धीरे धीरे शुद्ध शुद्ध करते हैं, परंतु जीव वेदों को जानने का अंतिम लक्ष्य होता है कृष्ण को पहचानना, कृष्ण को रियलाइज करना, ये वेदों का अंतिम लक्ष्य होता है। परमात्मा सभी के हृदय में है और हमें हमारी इच्छा के आधार पर ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनको ब्रह्म परमात्मा के जैसा भी जाना जाता है। भगवान व्यास देव के जैसे आके वेदांत सूत्र को लिखते भी हैं, श्रीमद् भागवतम को भी लिखते हैं, और हमें वेदों के द्वारा गाइडलाइंस देते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इसके बाद 16 से लेकर 18 तक एक भगवत तीन श्लोक हैं जिनको त्रि श्लोकी भगवत गीता भी बोला जाता है। जैसे हमने देखा था चतुश्लोकी भगवत गीता 10वें अध्याय में 8 से लेकर 11 तक, इसी तरह से ये त्रि श्लोकी भगवत गीता है। तीन श्लोकों में भगवत गीता का सार दिया गया है। 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, द्वापर मऊ पुरुष लोग, क्षर क्षर और अक्षर। क्षर मतलब च्युत और अक्षर मतलब अच्युत। च्युत का मतलब होता है जो कि जिनका पतन हो सकता है, अच्युत मतलब जिनका पतन नहीं हो सकता है। तो ये दोनों 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 जीव हैं, ये जीव भगवान के अंश हैं। तो अच्युत जीव होते हैं जो कि आध्यात्मिक संसार में हमेशा रहते हैं, जो नित्य मुक्त जीव बोलते हैं, जैसे भगवान के मित्र हैं सुबल, सुदामा, श्रीदामा, और द्वारका में दारुक हैं, और अलग अलग जो भगवान के भक्त हैं जो संसार हमेशा बहुत आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, नित्य मुक्त भक्त कहलाते हैं। और जो इस संसार में रहते हैं वो नित्य बद्ध कहलाते हैं, क्षर और अक्षर। तो ऐसा नहीं है कि नित्य बद्ध जीव जो है वो हमेशा यहीं पे थे, कभी भगवान के धाम में नहीं थे। नित्य शब्द का मतलब कई बार शास्त्रों में होता है कि बहुत लंबा समय, प्रभुपाद जी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं टाइम इमेमोरियल, इतना लंबा समय था कि हम भूल गए हैं कि वो कब हुआ था। तो हम बहुत समय से इस संसार में हैं, इसलिए भूल चुके हैं कि हम आध्यात्मिक संसार में थे भी कभी। तो हम च्युत जीव हैं, और अच्युत जीव मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त, एटर्नल जो आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। तो जो आध्यात्मिक संसार में रहते हैं वो भगवान की हमेशा सेवा करते हैं, और आध्यात्मिक संसार में भगवान के साथ लीलाएं करते हैं। उनके शरीर हमारे जैसे नहीं होते हैं, आध्यात्मिक शरीर पाया जाता है उनका, और जो भगवान की इच्छा होती है वही उनकी इच्छा होती है। और हम लोग जो हैं जीव भूत, वो इस संसार में इंद्रियों और मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमारा शरीर लगातार बदलता रहता है, और शरीर से संपर्क के कारण हमारा शरीर ऐसा लगता है कि हम लगातार बॉडी चेंज कर रहे हैं। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि मैं दोनों जीवों के ऊपर हूँ, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरतः। ये परमात्मा जो है, परम पुरुष, वो अविनाशी हैं और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। इसके अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो कि तीनों लोकों के अंदर प्रवेश करते हैं इस भौतिक संसार में, और सभी का पालन करते हैं। और भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम। मैं जो हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, और मैं दोनों प्रकार के जीव, क्षर जीव और अक्षर जीव, दोनों मेरे कंट्रोल में है, मैं दोनों का नियंत्रक हूँ। मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ च उत्तमः। इसलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, और जो परमात्मा है वो भी मैं ही हूँ, परम पुरुष मैं ही हूँ, और मैं क्षर जीव और अक्षर जीव, मतलब इस संसार में रहने वाले जीव और आध्यात्मिक संसार में रहने वाले जीव, दोनों का मैं मालिक हूँ, दोनों के मैं ऊपर हूँ, और मैं पुरुषोत्तम हूँ, संसार में सबसे उत्तम हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे सिद्ध मुक्त अवस्था में हो, हमेशा वो भगवान के कंट्रोल में ही रहता है, कभी जीव भगवान से ऊपर नहीं आ सकता है, भगवान के समान नहीं आ सकता है। तो ये सोचना गलत है कि जीव और भगवान एक ही स्तर पर है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान गीता में कितनी जगह पर क्लियरली बता रहे हैं, उसके बाद भी लोग जो गीता के नाम पर मिस इंटरप्रेट करते हैं, उनका किस प्रकार से दिमाग है हमें समझना चाहिए कि वो लोग इस तरह से नहीं करते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि किस कैसा किस प्रकार से जीव और भगवान हमेशा अलग-अलग हैं और जीव हमेशा भगवान के कंट्रोल में रहता है। इसके बाद अगले दो श्लोकों में भगवान जो उन्होंने ज्ञान दिया उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से असम्मूढ़ हो, जो संशय रहित होके मुझे भगवान पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, स सर्वविद भजति माम, वो व्यक्ति सब कुछ जानने वाला है और मेरी पूरी तरह से भक्ति करता है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो कोई भी मुझे संशय रहित होके पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। भगवान ने अभी बताया कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और जो इस प्रकार से भगवान को जानता है विदाउट डाउट, उसको कोई डाउट नहीं होता है, वो व्यक्ति स सर्वविद भजति माम, वो हर प्रकार से मेरा भजन करता है और मेरी भक्ति में हमेशा लगा रहता है। भजति शब्द का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भक्ति में होता है, भगवान की भक्ति करता है, समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञानों को प्राप्त कर लिया है। अगर कोई कृष्ण भक्ति में लगा है तो उसको और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, पहले ही वो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। अगर कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी शरण लेनी चाहिए, तो उसके बहुत सारे जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। तो जो इन पुरुषोत्तम भगवान को जानता है वो उनकी भक्ति में लग जाता है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। और अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। अनघ, अनघ शब्द का मतलब होता है कि जिसने कोई पाप नहीं किया। अघ मतलब पाप, जैसे अघासुर राक्षस का नाम था, पापी असुर, तो अनघ, अन मतलब नहीं, अघ मतलब पाप। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमने कोई पाप नहीं किया है, मया अनघ, कि ये हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सबसे गुह्य ज्ञान है। इति गुह्य तमम शास्त्रम, जो मैं तुम्हें बताया हूँ पुरुषोत्तम योग, ये वैदिक शास्त्रों का सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे महत्वपूर्ण अंश है और मैंने उसको अभी प्रकट किया है। इसको जान के जो व्यक्ति इसको जानता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास किस तरीके के? आध्यात्मिक प्रयास जो हैं वो उस व्यक्ति के पूर्ण होंगे। निष्पाप का मतलब है कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता है तब तक वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाता है, और भक्ति करने से व्यक्ति पाप को मुक्त हो जाता है तो भगवान को समझ सकता है। सातवें श्लोक में, 28वें, सातवें अध्याय में 28वें श्लोक में हम देखते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिन व्यक्तियों के पाप कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं वो पुण्य कर्म भगवान की भक्ति पर करना प्रारंभ करते हैं और उनकी भक्ति में दृढ़ता आती है। जब हमने सातवां अध्याय किया था तो हमने डिस्कस किया था उस श्लोक में कि भक्ति में अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हमें पाप के कर्मों को, पाप के विचारों को त्यागना होगा, तो हम भक्ति में स्ट्रांग बन सकते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में रह के पूर्ण कृष्ण भक्ति करते हुए हमें पाप के बातों को बिल्कुल दूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे जीत प्राप्त करनी है वो है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता मतलब हम सोचते हैं कि हम प्रकृति पे प्रभु बन जाएंगे, प्रकृति के मास्टर बन जाएंगे, और ये भोग करने की इच्छा जो है वो हमारे पतन का कारण होती है। तो इस भोग करने की इच्छा को सेवा करने की इच्छा से बदलना है और भगवान की प्रेम भक्ति में प्राप्त होना है। दूसरी एक दुर्बलता होती है कि स्वामी बनने की इच्छा। इन संसार की दोनों समस्याएं, इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। पहला हृदय की दुर्बलता है प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, दूसरा है स्वामित्व की इच्छा। प्रभु की इच्छा से ही स्वामित्व की इच्छा भी आती है। तो इस प्रकार से इन अध्याय के पहले 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से दूर करने के बारे में बताया गया है, भौतिक संसार को डिस्कस करके और वैराग्य के द्वारा उससे दूर करने, और 6वें श्लोक से अभी इस श्लोक तक पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। तो हम जस्ट एक शॉर्ट रिकैप करेंगे कि सबसे पहले 5 श्लोकों में हमने देखा कि कैसे ये भौतिक संसार एक बरगद का वृक्ष है और उसकी शाखाएं जो हैं वो उसके छंद, क्या बोल सकते हैं, छंदाम से यस्य परिणामि, उसकी पत्तियां जो हैं वो छंद हैं, वैदिक शास्त्र हैं, और उसकी टहनियां इंद्रिय भोग हैं, उसकी शाखाओं का कोना जो है वो इंद्रियां हैं, और इसके फल हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये 3 गुणों के द्वारा पोषित होता है। इसकी ब्रांचेज ऊपर से नीचे जाती रहती हैं और ये चालू होता है ब्रह्मलोक से, परंतु इसकी कुछ शाखाएं भौतिक संसार मर्त्यलोक में भी होती हैं। और इसको देख के पता चलता है कि ये वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। जैसे कोई वृक्ष पानी में देखते हैं तो उसकी परछाई में जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं, तो इस संसार की जड़ें ऊपर हैं, इसका मतलब ये आध्यात्मिक संसार में जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है। और उसके बाद हमने 6वें श्लोक से 11वें श्लोक तक देखा था। आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार का वर्णन, भगवान ने भौतिक आध्यात्मिक संसार के बारे में बताया था कि वहाँ पे सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना होता है, और सारे जीव मेरे अंश हैं, और इस संसार में ही वो रह के अपनी इंद्रियों और मन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति होते हैं वो इसको देख पाते हैं, और मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं देख पाते हैं। इसके बाद 12 से 15 तक हमने देखा किस प्रकार से भगवान धरती के लोकों के अंदर प्रवेश करके उस लोकों को मेंटेन करते हैं। सूर्य के, चंद्र के तेज के द्वारा भगवान संसार को चलाते हैं, और सारे वेदों को भगवान जानते हैं, वेदों के संकलन करता है। भगवान हमें बुद्धि देते हैं, हमसे भुलाते भी हैं, और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उसके बाद 16 से 18 तक हमने देखा कि दो प्रकार के जीव हैं, त्रिश्लोकी भगवद गीता, 3 श्लोकों में भगवद गीता का सार कि दो प्रकार के जीव हैं, कुछ जीव यहाँ रहते हैं, कुछ जीव आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। और भगवान परमात्मा जो है वो इन दोनों के अलावा हैं, वो लोकों में प्रवेश करके लोगों को मेंटेन करते हैं। और भगवान ही वो परमात्मा परम पुरुष हैं जो कि तीन दोनों क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से ऊपर है। इसके बाद भगवान ने लास्ट के 2 श्लोकों में बताया कि भगवान को जानना मतलब सब जानना, सब कुछ। अगर कोई कृष्ण को जानता जाता है तो वो सब कुछ जान सकता है। और भगवान बता रहे हैं अंतिम श्लोक में कि अभी जो उन्होंने ये पुरुषोत्तम योग बताया है, ये वेदों का सबसे गुप्त अंश है, सबसे महत्वपूर्ण अंश है। इसको जो जानता है वो अपने आप बुद्धिमान हो जाएगा और अपने जीवन को सफलता प्राप्त करेगा, जीवन में आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेगा। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम योग अध्याय जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय है भगवद गीता का, और इस अध्याय को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटा अध्याय है तो चाहे तो उसको पढ़ना बहुत आसान है। कुछ दिन निकाल के ध्यान से उसके तात्पर्य को पढ़ सकते हैं, उससे बहुत फायदा मिलेगा। कल हम 16वां अध्याय डिस्कस करेंगे, जो कि 16वां अध्याय डिवाइन और डेमोनियक नेचर, प्रकृति में दो प्रकार के जीव होते हैं, दैवी और असुरी। उनके लक्षणों को हम देखेंगे, दैवीय गुण क्या कहलाते हैं, असुरी गुण क्या कहलाते हैं, वो हम देखेंगे कल 16वें अध्याय में। और इन अध्यायों को आप, इन लेक्चर्स को आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इन लेक्चर्स पर आधारित प्रश्न उत्तर का क्विज भी हम कर रहे हैं। कुछ कुछ अध्यायों को पिक करके उनका क्विज करते हैं, तो अध्यायों को समझ के उनका नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास होगा उस क्विज में भाग लेके। जो भी अच्छे से सुनेंगे उनको आंसर्स पता रहेंगे, उनके नाम हम क्लासेस के बाद में अनाउंस कर सकते हैं। हरे कृष्ण, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय।